नमस्कार भारत, सोमवार 14 सितंबर, मैं हूं निखिल रंजन। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में बड़ा धमाका, 10 लोगों की मौत, 60 घायल।
टीम के साथ हम मौके पर जा रहे हैं, हम आपको पूरा जैसे सीन बिल्ड होगा वो हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन हम लेट्स नॉट रश टू।
मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचे मुख्यमंत्री का विरोध, धमाके में कई परिवार हुए बेसहारा। बिहार में सीटों के बंटवारे पर एनडीए में खींचतान निबटने के आसार, देर रात तक चली मांझी से बातचीत। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने जीता यूएस ओपन का महिला युगल खिताब।
The 2015 US Open Women's Doubles Champions, Martina and Sanya, with your trophy.
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। पाकिस्तान के पंजाब के मुल्तान शहर में हुए एक बड़े धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जबकि 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। धमाका मुल्तान के बस अड्डे के पास विहाड़ी चौक इलाके में एक वाहन में हुआ है। मिस्र के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके सैन्य बलों ने भूल से 12 पर्यटकों को चरमपंथी समझकर मार दिया है। मारे गए लोगों में मैक्सिको के नागरिक शामिल हैं। मिस्र के गृह मंत्रालय के मुताबिक ये पर्यटक देश के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में एक प्रतिबंधित क्षेत्र में चार पहिया वाहनों से घुस गए थे। मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 10 लोग घायल भी हुए हैं। प्रवासियों की बड़ी तादाद में म्यूनिख और अन्य शहरों में पहुंचने के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य ने अपनी सीमाओं पर सख्ती शुरू कर दी है। जर्मनी में अधिकारियों से ऑस्ट्रिया की सीमा से आने वालों के पहचान पत्र जांचने के लिए कहा गया है, जबकि सोमवार सुबह तक ऑस्ट्रिया से आने वाली रेलगाड़ियां रोक दी गई हैं। जर्मनी के गृह मंत्री थोमास दे मेजियरे का कहना है कि यह कदम अस्थायी हैं। उन्होंने कहा,
Deutschland in den letzten Wochen gezeigt hat mit seinen hauptamtlichen Mitarbeitern und
जर्मनी ने मदद करने की काफी इच्छा शक्ति दिखाई है। बहुत से स्वयंसेवकों ने मदद की है, लेकिन ये मदद बहुत ज्यादा खिंचनी नहीं चाहिए। इसलिए ये कदम बाकी यूरोपीय देशों के लिए ये संकेत भी हैं कि जर्मनी अपनी मानवीय जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, लेकिन प्रवासियों के बोझ के मद्देनजर उन्हें यूरोप में उचित रूप से बांटा भी जाना चाहिए। ये थे जर्मनी के गृह मंत्री के शब्द। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था UNHCR ने यूरोपीय देशों के अलग अलग सीमा कानून अपनाने पर चिंता जाहिर की है। UNHCR ने चेतावनी दी है कि इससे प्रवासी कानूनी दिक्कतों में फंस जाएंगे। संस्था का कहना है कि ऐसे हालात में आज होने वाली यूरोपीय देशों के गृह मंत्रियों की बैठक और अहम हो जाती है। इसी बीच इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से सीरिया में शांति बल भेजने की आपात अपील की है। संगठन का कहना है कि शांति बल सीरिया में स्थिरता ला सकेंगे, जिससे प्रवासियों की तादाद में कमी आएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के गवर्नर जेरी ब्राउन ने जंगलों में भड़की कई भीषण आगों के मद्देनजर प्रभावित इलाकों में आपात स्थिति घोषित की है। लोगों के अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अनियंत्रित आग से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास के विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आपात मदद लोगों को सामग्री या खाद्य पदार्थों के बजाय कैश में अधिक दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैश में दी गई मदद बर्बाद कम होती है, क्योंकि लाभार्थी खुद तय कर पाते हैं कि उन्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और यूएस ओपन के पुरुष एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच चल रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, आज निखिल रंजन के साथ। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 60 लोग घायल हुए हैं। धमाका भीड़ भाड़ वाले इलाके में कल शाम को हुआ। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में हुए एक बड़े धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हैं। अधिकारियों का कहना है कि धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जबकि मुल्तान के निश्तर अस्पताल के अधिकारियों ने बीबीसी को बताया है कि 7 लोगों को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था, जबकि 13 घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ा है। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक 60 से ज्यादा घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक धमाका शहर के भीड़भाड़ वाले बस अड्डे के करीब बिहाड़ी चौक पर एक वाहन में हुआ। मुल्तान के पुलिस अधीक्षक खालिद रऊफ का कहना है कि बम वाला बैग या तो गाड़ी में रखा जा चुका था या रखा जा रहा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि सड़क में 2x2 फीट का गड्ढा हो गया। हालांकि पुलिस प्रवक्ता तारिक मसूद का कहना है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा,
फॉरेंसिक टीम के साथ हम मौके पर जा रहे हैं, हम आपको पूरा जैसे सीन बिल्ड होगा वो हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन हम लेट्स नॉट रश टू कंक्लूजन।
एक मृतक के रिश्तेदार मोहम्मद खुर्शीद ने कहा कि धमाका अचानक एक वाहन में हुआ। उन्होंने कहा,
हमारा एक भतीजा था, एक भतीजे के घर वाले थे, एक भतीजे का बेटा था, वो जा रहे थे अपने माँ बाप के मिलने के लिए, तो अचानक ये वो IS में गए हैं, तो ये कोई हादसा हो गया उनके साथ, तो उनके जुमे वाले दिन फ्लैट थी, तो जो भतीजा है उसकी लात कट गई है मेरा ख्याल, और भतीजे का जो बेटा है वो फोत हो गया, जो हमारी भाभी है उसका हालात अभी नाजुक है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने धमाके पर अफसोस जताया है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।
पाकिस्तान के मुल्तान शहर में बड़ा धमाका हुआ है। रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इधर भारत में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद में शनिवार को हुए विस्फोट के बाद 88 लोगों की मौत हो गई। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हादसे के शिकार लोगों के बीच मरहम लगाने पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस हादसे में मारे गए कई लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई से ही उनका परिवार चलता था, लेकिन अब उनके लिए जीवन चलाने का संकट पैदा हो गया है। झाबुआ से शुरेनिया जी की रिपोर्ट सुनिए।
यह आवाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पेटलावद पहुंचने के बाद वहां के स्थानीय लोगों की है। ये लोग हादसे के बाद खासे नाराज नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने विरोध को देखते हुए मरने वालों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है। शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मृतकों के घर पर भी गए, लेकिन इन सब के बीच इस हादसे के शिकार लोगों के परिवार के लिए मुश्किल भरा वक्त शुरू हो चुका है। 20,000 की आबादी वाले इस कस्बे में कई परिवारों ने घर को चलाने वाले मुखिया को ही खो दिया है। 40 साल के मनोज बरेला पेटलावाद में अंडे का ठेला लगाते थे। वो 8 लोगों के परिवार में एकमात्र सदस्य थे जिसकी कमाई से परिवार चलता था। उनके साथ उनके भाई, भाभी और माता पिता रहते थे। बड़ा भाई दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी मनोज ही निभाते थे। रोज की तरह शनिवार को भी मनोज अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ पोहा लेने उस दुकान पर गए थे जिसके बाजू वाली दुकान में विस्फोट हुआ, लेकिन रोज की तरह मनोज उस दिन पोहा लेकर अपनी बेटी के साथ वापस नहीं लौटे। मनोज की भाभी कैलाशी बाई ने बताया,
मतलब सुबह में दुकान करते है अंडे की, तो बर्तन लेने गए थे दुकान पे, आते समय मतलब बच्चे को पोए कचौरी समोसे लाते है साथ में, तो दुकान पे गए थे होटल पे दिलाने के लिए। उसके बाद एकदम ऐसे धमाका हुआ तो हम फिर दौड़ के गए वहाँ पे देखे तो सब लाशों के ढेर पड़े थे, उनको ढूंढ के वहाँ से निकाले, अस्पताल ले गए इनको, अब रतलाम मतलब रेफर करिया मनोज बारेला को, और बच्ची को दाहोद ले गए, अभी दाहोद से बड़ौदा इनका ट्रीटमेंट चल रहा है।
वहीं दूसरी तरफ मनोज के ही मित्र जीवन ठाकुर की नींद हादसे वाले दिन देर से खुली। इस देरी ने शायद उन्हें नई जिंदगी दे दी। हर रोज जीवन अपने दोस्त मनोज और 2 अन्य दोस्तों के साथ उसी दुकान पर जाकर कुछ खाते थे, लेकिन उस दिन पहुंचने से पहले ही विस्फोट हो गया। उनके सभी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस बीच दाहोद, रतलाम, झाबुआ और इंदौर के अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। हमने उस दिन उस वक्त होटल में मौजूद कई लोगों से बातचीत की जो अब अस्पताल में घायल अवस्था में पड़े हैं।
आवाज आई तो ऊपर ऊपर आया तो वो शटर में से फूटा फटाक करके, तो दुकान वाले का आया वहाँ पर, वही रहता था एक साइड में उसका बका था, 2 दुकान थी, एक उनकी ये चक्की थी, दूसरा गोदा उनने दे रखा था, तो वहाँ वो खाद भी रखता था बैठा है, नहीं वो किराएदार जो से ना वो बेच रहा था, तो क्या उन्हें क्या किससे क्या हुआ पता नहीं, पिलट पर उसको फोन लगाए यार है मालिक मकान मालिक ने, तो उन्हें आके फिर क्या शर्ट खोली मैं चलो मैं नीचे जाओ, जो मैं वापस नीचे गया था रोटी बनाने के समोसे की, तो आया और फिर मैं फिर चंडर लग गया अंदर घुसो फिर धमाका हुआ जबरदस्त।
वो धमाका हुआ था तो ऐसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला सर, बाद में उठाने के लिए लेके आएगा, एक बार फटा तो हम समझ गए कि ऐसा जला होगा, उसके बाद फिर फटा तो मालूम नहीं पड़ा क्या फटा गया नहीं, फिर मेरे को बेहोश हो गया तो मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा, फिर अस्पताल में लेके आए जब मालूम पड़ा।
लेकिन इन सब के बीच स्थानीय लोग प्रशासनिक भूल को इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि अगर वक्त रहते प्रशासन कोई कदम उठा लेता तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। जिलेटिन की जखीरे की शिकायत कई बार की गई थी लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
रिपोर्ट सुना रहे थे शुरेन नियाजी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के मुताबिक झाबुआ के पेटलावद में हुए धमाके में मारे गए 88 लोगों की पहचान हो चुकी है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बाबूलाल गौर से बात की और पूछा कि इस हादसे की अब तक की जांच में क्या सामने आया है।
वहां पर एक व्यापारी है जिसका फर्टिलाइजर का सेलिंग एजेंट है, उसने जेनेटिन की जो छड़े हैं वहाँ इलीगल तौर पर स्टोर कर ली थी और ऐसा बताते हैं कि एक सिलेंडर जो है वो बस्ट हो गया, उसके कारण वो विस्फोट हो गया। अब वो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए घोषणा हो गई है और हाईकोर्ट के जज के द्वारा पूरे इंक्वायरी की जाएगी तो उसमें वास्तविक तथ्य का पता चलेगा।
जी सही नंबर क्या है, मरने वालों का सही नंबर की आपको जानकारी है?
अभी 88 लोगों की जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं।
गौर साहब ये मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ प्रशासन की ढील की बात आ रही है, आज मुख्यमंत्री वहाँ गए थे तो उन्हें भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा, इसे लेकर आप क्या कहेंगे?
लोगों की नाराजगी है और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी लापरवाही के कारण जो बारूद या जेनेटिन की छड़े गोडाउन में होना चाहिए वो दुकान पे कैसे आई।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इस लिहाज से आपको ये कितना गंभीर मामला नजर आता है?
बहुत गंभीर है, अत्यधिक गंभीर है। मध्य प्रदेश में ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई, ये हादसा बहुत बड़ा है, इसलिए सहायता राशि 10 लाख प्रत्येक परिवार को दी जा रही है।
लेकिन ये कहना था, वहाँ के लोगों की शिकायत बार बार ये थी कि इसके बारे में प्रशासन को बार बार जानकारी दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसे आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं?
नहीं, गंभीर मामला तो इसलिए मैं भी गया, मुख्यमंत्री भी गए, चीफ सेक्रेटरी गए, पुलिस के जनरल भी गए और भी अधिकारी जा रहे हैं।
इसे लेकर क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक की गई है?
वो एक दो दिन में हो रही है कार्रवाई।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, आज निखिल रंजन के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से रविवार को भी सीट समझौते का ऐलान नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी से दिन भर बात होती रही। बैठकों के इस दौर के बीच भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं ने जानकारी दी कि गठबंधन पर लगभग सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
जीतन राम मांझी नाराज हैं या मान गए, रविवार को दिन भर ये सवाल गर्म रहा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के गठबंधन का गणित मांझी की नाराजगी की वजह से ही उलझा हुआ है। मांझी अपनी पार्टी को मिल रही सीटों की संख्या को लेकर खुश नहीं थे, इसीलिए अब तक एनडीए सीट समझौते का ऐलान नहीं कर सका है। रविवार को दिन भर दिल्ली में मांझी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात का दौर जारी रहा। शाम होते होते समझौते के फार्मूले पर सहमति की खबरें आने लगीं। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं के सुर में नरमी दिखने लगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता शारिम अली ने बीबीसी से कहा कि उनकी पार्टी सीटों की संख्या को लेकर किसी तरह की जिद पर नहीं अड़ी है, बल्कि उसकी मांग एक सम्मानजनक समझौते की है। उन्होंने कहा,
सकारात्मक बात हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए के जो नेतागण है इसको आपस में मिल बैठ कर सुलझा लेंगे और ये अनकंडीशनल अलायंस में हम लोग आए हैं, लेकिन सम्मान जरूर चाहेंगे क्योंकि पूरे बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए सीटों के नंबर्स पे कभी तो हम लोगों ने कोई बात की नहीं, ना कभी हम लोगों ने डिमांड किया। 13 सीटिंग विधायक है, 2 MLC है और अन्य दल भी गठबंधन में है, तो एक फॉर्मूला हो जो सारे लोगों को देखने में अच्छा लगे।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जीतन राम मांझी समेत गठबंधन का कोई भी नेता नाराज नहीं है।
देखिए, जहां तक गठबंधन की गुत्थी है, ये कभी उलझी ही नहीं थी तो ये सुलझने की बात क्या है, ये सब सुलझी हुई थी और हम सबका एकमात्र जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सब मिलकर जो कुशासन बिहार में रहा है उसको समाप्त करते हैं। और मांझी जी ने खुद ही उत्तर दिया है, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप रूठे हुए हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। किसी भी चुनाव का जो एक मूल धर्म होता है जो कि गठबंधन में लड़ा जाता है उसमें डिस्कशन तो होता ही है।
रविवार को सीटों के बंटवारे का ऐलान भले ही ना हुआ हो लेकिन ये संकेत जरूर साफ हैं कि जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के नाव के ही मांझी बनेंगे। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
श्रीलंका के राष्ट्र क्षमा कीजिएगा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे 3 दिन के दौरे पर आज भारत आ रहे हैं। वो यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। पिछले महीने हुए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ये विक्रम सिंघे की पहली विदेश यात्रा है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार एमआर नारायण स्वामी से बात की और पूछा कि विक्रम सिंघे की यात्रा दोनों देशों के रिश्ते के लिहाज से कितनी अहम है।
देखिए, अहम तो है ही इसमें, लेकिन हमें ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि श्रीलंका में जब भी कोई नए राष्ट्रपति या नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो उनका एक तरह से रूटीन सा बन जाता है कि पहला जो ट्रिप होगा उनका विदेश का तो वो हिंदुस्तान की तरफ होगा, क्योंकि हिंदुस्तान और श्रीलंका के जो संबंध हैं और जो इम्पोर्टेंस श्रीलंका हिंदुस्तान को देता है तो देना भी चाहिए और वाइस वर्सा भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग समझते हैं कि बेस्ट है कि हम पहले हिंदुस्तान जाएं।
चीन का भी इस बीच में बड़ा दखल बढ़ा है श्रीलंका के अंदर, ऐसे में विक्रम सिंघे ने भारत को चुना है, 3 दिन की यात्रा वो करने वाले हैं, यहाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, विदेश मंत्री से भी वो मिलने वाले हैं, तो क्या मेन एजेंडा लेकर वो यहाँ आ रहे हैं?
एक तो यह है कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका में तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसमें चीन का प्रभाव बड़ा नहीं, और पिछले 10 सालों में जब विपक्ष का राज था उस समय ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ हो गया था और पश्चिमी देश से तो खासकर कुछ देशों से वो काफी दूर हो गए थे और भारत से भी संबंध में थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी, तो इसके बारे में चुनाव के समय में भी जिक्र हुआ, तो मेरे ख्याल से एक तरह से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोर्स करेक्शन, यानी वो एक जो रास्ता था उसमें जो पटरी थोड़ी सी उसको पटरी को अपनी जगह में डाल रहे हैं और ये बताना चाहते हैं हाँ हम चीन से संबंध बनाए रखेंगे लेकिन हिंदुस्तान हमारे लिए प्रमुख है, नंबर एक। नंबर दो, बातचीत तो कई मुद्दों पे होगी, बायलैटरल बातें हैं और जो तमिल इश्यू है उसका सवाल है और ये जो मछुआरे हैं उसका सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं उनसे बातचीत होगी, और जो मान लीजिए हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव में ये लगता है कि श्रीलंका थोड़ा हमसे दूर हो गया था तो कैसे हम कुछ कदम उठाएं और कुछ कदम वो उठाएं जिससे हमारे संबंध वापस 10 साल पहले जैसे थे वैसे हो जाएं।
भारत सरकार इस यात्रा को रानिल विक्रम सिंघे की कितना महत्व देगी?
श्रीलंका के जो भी इस समय सत्ता में हैं, उनको भी एक ध्यान से थोड़ा चलना होगा, कहीं वहाँ पर लोग ये ना बात फैलाएं जैसे बात फैली थी जनवरी में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए और राजपक्ष हार गए कि हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उसकी वजह से ये सब हुआ, तो ये सब चीजें बड़ी ये सेंसिटिव हैं और वहाँ की जनता इस बातों को विश्वास भी करती है, तो हमें जिसे एक ओवर बेयरिंग एटीट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं एक बिग ब्रदर एटीट्यूड वो तो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, और उनके कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स होंगे हमारे बारे में उसे सुनना चाहिए और जहां तक हो सके अगर हिंदुस्तान आउट ऑफ द वे जाकर उनके कंसर्न्स को उनको ये एश्योरेंस देते हैं आपकी जो भी कंसर्न्स हैं उस पर हम एक के बजाय 2 कदम लेने के लिए तैयार हैं तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा हिंदुस्तान और श्रीलंका के संबंधों में।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आ रहे हैं भारत और उनकी इस यात्रा के बारे में विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एमआर नारायण स्वामी। और अब आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है इसकी चर्चा कर लेते हैं। दिलनवाज पाशा अखबारों पर नजर डाल चुके हैं, बताइए दिलनवाज क्या है आज के अखबारों में?
जी, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले ज्यादातर हिंदी अखबारों ने दिल्ली में डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप को मुख्य खबर बनाया है ज्यादातर अखबारों में, इस पर आऊंगा बाद में।
कल तो शायद सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की।
जी जी, लेकिन पहले जिक्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों के नतीजे का। एक सीट एबीवीपी ने जीती है और इस पर जनसत्ता ने शीर्षक लगाया है लाल किले में 14 साल बाद भगवा। दैनिक जागरण ने भी कहा है कि जेएनयू में भगवा को जीत। और ये डेंगू वाली जो खबर है इस पर अखबारों ने डराने वाले शीर्षक लगाए हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है कल का सुपर पावर मच्छर के आगे बेबस। हिंदुस्तान लिखता है एनसीआर में डेंगू का कहर। और अमर उजाला कहता है दिल्ली में डेंगू का 5 साल में सबसे बड़ा हमला, पिछले साल से 38 गुना ज़्यादा मरीज। द टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खास खबर का जिक्र करना चाहूंगा, जिसके मुताबिक पिछले एक साल में सड़क पर में गड्ढों के कारण हुए हादसों में मरने वालों की तादाद करीब 11,000 रही है।
बहुत बड़ी तादाद है।
जी बिल्कुल, सड़क पर गड्ढों से हुए हादसों में 11,000 लोग मारे गए हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में जो हादसा हुआ है, वहां पीड़ितों से मिलने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भीड़ ने घेर लिया, और ये खबर भी अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से है। नई दुनिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस व्यक्ति के घर में ये विस्फोटक रखे गए थे, उसका लाइसेंस उसके मृतक भाई के नाम से था, यानी उसकी जो उसमें प्रशासनिक लापरवाहियों से जुड़ी खबरें भी अलग अलग अखबारों में हैं। नई दुनिया की ही एक खबर के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल UAV यानी जो मानव रहित विमान है उनके जरिए तस्वीरें ले रहे हैं, और अधिकारियों की लापरवाही से ये तस्वीरें वायरल भी हो गई हैं सोशल मीडिया पर।
और एक खबर पर मेरी भी नज़र गई है दिलनवाज, मैं पढ़ देता हूँ कि जो आने वाले सितंबर महीने की मतलब इसी महीने की 22 तारीख को गुड़गांव में कार फ्री डे मनाया जा रहा है, मतलब उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक कोई भी शख्स जो है वो गाड़ी लेकर के नहीं निकलेगा, और जो वैकल्पिक साधन है उनका लोग प्रयोग करेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सड़कों को कभी कभार कारों से मुक्ति मिल सके।
जी बिल्कुल, और ये हर मंगलवार को किया जाएगा, यानी सप्ताह में एक दिन कारें गुड़गांव की सड़कों पर नहीं निकलेंगी। और
बहुत अच्छी खबर है, और शायद गुड़गांव के लोग इससे फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ, और आज सोमवार है, और हर सोमवार को आप सबको इंतजार होता है पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी का, तो आइए सुनते हैं।
पाकिस्तान में ब्राह्मणों की संख्या उतनी ही है जितनी सऊदी अरब में यहूदियों की। पाकिस्तान के हिंदू समुदाय में आपको या तो खुशहाल वनिया या बनिया, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, टीचर और कर्मचारी मिलेंगे, और मुस्लिम बहुमती पाकिस्तान में यही क्लास अल्पसंख्यक राजनीति का चेहरा भी है, लेकिन उनके अधिकतर वोटर शेड्यूल कास्ट हैं, जैसे मेघवाड़, कोली, भील आदिवासी और चोलिस्तान के रेगिस्तानी ओड, जिनका रहन सहन राजस्थानी खानाबदोशों जैसा है। छूतछात का निज़ाम कभी सिंध और पंजाब के इन इलाकों में पार्टीशन से पहले होता होगा, मगर अब ना होने के बराबर है। चंद वर्ष पहले तक रियासत गुजरात से मिलने वाले 2 जिलों थरपारकर और उमरकोट में वनियों और शेड्यूल कास्ट के होटल और बर्तन अलग अलग थे, पर अब कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। थरपारकर जिला के हेडक्वार्टर मिट्टी शहर में हिंदू आबादी ज़्यादा है, और शहर से बाहर गाँव में मुसलमान किसान और चरवाहे। यही हाल उमरकोट का भी है, मगर पीरों फकीरों के मज़ार और दरबार और मेले ठेले हिंदू मुस्लिम झंझट से मुक्त हैं। इसीलिए सिंध में सच्चल सरमस्त शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और शाह इनायत के हिंदू और मुसलमान मुरीद एक ही कब्रिस्तान में अपने पीर की पाइंती दफन होना पसंद करते हैं, जबकि उडेरोलाल में पीठ से पीठ जोड़े मंदिर और मस्जिद में कौन कब आके सो गया, चला गया, रह गया, ना कोई पूछता है ना बताता है। पिछले 15-20 वर्ष में थरपारकर, उमरकोट और चोलिस्तान के इलाकों में इस्लामिक राजनीतिक गुटों की तादाद और असर में इजाफे से असहिष्णुता की छुटपुट घटनाएं जरूर घटी हैं, मगर सदियों की जमीन में पैवस्त बर्दाश्त के बरगद को उखाड़ने के लिए अब भी बहुत समय चाहिए। पाकिस्तान में आप सब्जी खाते हैं कि गोश्त, इस बारे में कोई कानूनी बाधा या पूछताछ या पकड़ धकड़ नहीं, सिवाय इसके कि आप रमज़ान में खुलेआम ना खाए पिए। हालांकि पाकिस्तान में गाय और बैल काटने पे कोई रोक नहीं, फिर भी उमरकोट और थरपारकर के मुसलमान बकरईद के मौके पे गाय या बैल की कुर्बानी नहीं करते, और ना ही शादी गमी के मौके पे अपने हिंदू दोस्तों को उन बर्तनों में खाना खिलाते हैं जिनमें बीफ खाया गया हो। जबकि हिंदू अपने त्योहारों और शादियों में 2 तरह के खाने बना के अलग अलग मेज़ों पर रखते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, आपकी मर्जी खाएँ ना खाएँ। इसी तरह होली के मौके पर थरपारकर और उमरकोट में मुसलमान भी जुलूस में शामिल होते हैं, लेकिन उन पर कोई खुद से रंग नहीं फेंकता, जो चाहे खुद ही अपने पे रंग डाल ले या डलवा ले। ये सब बताने का मतलब ये लेक्चर देना नहीं है कि इस तरह भी साथ साथ रहा जा सकता है। हमें क्या, अगर किसी को धर्म की तलवार बनाना अच्छा लगता है या किसी को आसमानी किताबों से सिर्फ फूल झड़ते नजर आते हैं, जैसी सोच वैसी आँख वैसा मंजर, हमने समाज सुधारी का ठेका थोड़ी ले रखा है।
पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की यह डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अब बात उन खबरों की जिन पर आज पूरे दिन रहेगी हमारी नजर।
ब्राजील्स में यूरोपीय यूनियन के देशों के गृह मंत्री प्रवासियों को यूरोप में कोटा के आधार पर बांटने के प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। पूर्वी यूरोप के देश इन प्रस्तावों का सख्त विरोध कर रहे हैं। अमेरिका का वाणिज्य विभाग आज अगस्त महीने के लिए अमेरिका में फुटकर बिक्री का डाटा जारी करेगा। इसे अर्थव्यवस्था की सेहत का अहम मापदंड माना जाता है। विश्व फुटबॉल संगठन फीफा में भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच कर रहे स्विट्जरलैंड के जांचकर्ता और अमरीकी न्याय विभाग के अधिकारी आज मीडिया को अब तक की जांच के बारे में जानकारी देंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे सोमवार को 3 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। बिहार में एनडीए में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि आज इस बारे में कोई ठोस संकेत मिल सकते हैं। और गुजरात में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण का आंदोलन चला रहे हार्दिक पटेल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।
और अब सुन लेते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
The 2015 US Open Women's Doubles Champions, Martina and Sandia, with your trophy.
भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने उम्मीदों के अनुरूप कल अमरीकी ओपन का महिला युगल खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैसी डेलकुआ और कजाकिस्तान की यारोसलावा शेविदोवा की जोड़ी को 6-3, 6-3 से मात दी। इससे पहले भारत के लिएंडर पेस भी मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीत चुके हैं, तो हिंगिस का साथ भारतीय खिलाड़ियों के लिए यादगार बना। वैसे सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस विंबलडन का महिला युगल खिताब भी इसी साल अपने नाम कर चुकी हैं। उधर अमेरिका के लास वेगास शहर में समाप्त हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का अभियान भी एक कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ। भारत के नरसिंह यादव ने पुरुषों के 74 किलोग्राम भार वर्ग के फ्रीस्टाइल मुकाबले में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने रियो ओलंपिक का टिकट भी हासिल किया। नरसिंह के अलावा 57 किलो भार वर्ग में अमित कुमार, 70 किलो भार वर्ग में अरुण कुमार और 125 किलो भार वर्ग में सुमित क्वार्टर फाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। वहीं अमेरिका के मशहूर पेशेवर मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर ने कल अपने ही हमवतन आंद्रे ब्रेटो को हराकर रिंग में लगभग 2 दशक तक अपने अजेय करियर के बाद संन्यास भी ले लिया। इसके साथ ही मेवेदर ने महान हैवीवेट मुक्केबाज रॉकी मर्सियानो के 49 जीत 1 हार नहीं के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। उधर ऑस्ट्रेलिया भले ही टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड से हारा, लेकिन 5 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया ने ओल्ड ट्रैफर्ड में कल खेले गए 5वें और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इंग्लैंड को बेहद आसानी से 8 विकेट से मात दी और इसके साथ ही सीरीज भी 3-2 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए केवल 139 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 24.2 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज एरन फिंच 70 और जॉर्ज बेली 41 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी पूरी टीम 33 ओवर में ही 138 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 27 रन देकर 4 और जॉन हेस्टिंग्स ने 21 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा भारत के यूकी भामरी ने चीन के डीवू को 3-6, 6-0, 7-6 से हराकर शंघाई चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया।
और यूएस ओपन के मेंस फाइनल का मुकाबला चल रहा है रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच, और जोकोविच ने पहला सेट 6-4 से जीता था। उसके बाद फेडरर ने 7-5 से सेटों की बराबरी कर ली है और ये मुकाबला भी जारी है, जो कि बारिश की वजह से 3 घंटे की देरी से शुरू हुआ। इसके बारे में जानकारी अगले कार्यक्रम में देंगे। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
पाकिस्तान के पंजाब के मुल्तान शहर में हुए एक बड़े बम धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जबकि 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। मिस्र के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके सैन्य बलों ने भूल से 12 पर्यटकों को चरमपंथी समझकर मार दिया है। प्रवासियों की बड़ी तादाद में म्यूनिख और अन्य शहरों में पहुंचने के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य ने अपनी सीमाओं पर सख्ती शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था UNHCR ने यूरोपीय देशों के अलग अलग सीमा कानून अपनाने पर चिंता जाहिर की है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से सीरिया में शांति बल भेजने की आपात अपील की है। अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत के गवर्नर जेरी ब्राउन ने जंगलों में भड़की कई भीषण आगों के मद्देनजर प्रभावित इलाकों में आपातकाल घोषित किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे एक घंटे बाद फिर मुलाकात होगी विश्व भारती में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, दिलनवाज पाशा और निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।